हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 176 अरुण की आवाज़ सुनकर सुनैना और आदित्य दोनों अपने कमरों से निकलकर नीचे हॉल में आए। फिर अरुण की तरफ देखते हुए सुनैना ने उससे पूछा, अरे अरुण, तुम यहाँ इस वक्त क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
वैसे तो ठीक है, लेकिन शायद सब ठीक नहीं है।
वो नैना दी को लेकर थोड़ा सा परेशान था मैं बस। सुनैना के नीचे हॉल में आते ही अरुण ने उससे बात का जवाब दिया। नैना का नाम आते ही सुनैना के चेहरे पर भी थोड़ी टेंशन नज़र आने लगी। उसके पीछे खड़े आदित्य को भी जैसे कुछ याद आ रहा और वो आगे आते हुए सुनैना के कान में एकदम धीरे से बोला, नैना, तुम्हारी बड़ी बहन ना, तुम्हारी तो बात हुई थी ना शायद उससे। आदित्य की बात सुनकर सुनैना ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा किया और अरुण की तरफ आगे बढ़कर उससे पूछा, क्या हुआ नैना दी को, तुम अचानक से इतना परेशान क्यों हो उन्हें लेकर? वो ठीक है? स्वीटी के लिए ये एकदम नया नाम था। उसने आज तक नैना नाम ना तो सुनैना के मुंह से सुना था और न ही उसे देखा था, लेकिन इतना पता चल गया था कि नैना सुनैना की बड़ी बहन है और अभी शायद वो कहीं गायब है, इसीलिए दोनों भाई बहन उसके लिए परेशान हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी बात होती है नैना दी से, सिर्फ मुझसे ही बात नहीं करती अब वो। सुनैना की बात सुनकर हैरानी और कन्फ्यूजन के मिले जुले भाव से अरुण ने उससे पूछा, नहीं, मेरी भी बात नहीं होती और हाँ, काफ़ी टाइम से नहीं हुई। लास्ट टाइम उन्होंने किसी और के नंबर से कॉल किया था और बोला था कि मैं इस पर दोबारा कॉल ना करूं, क्योंकि वो किसी मूवी की शूटिंग के लिए आउट ऑफ द सिटी गई हुई हैं और वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। फिर मेरे एग्जाम्स और खुद की लाइफ में इतना कुछ था कि मैं ध्यान नहीं दे पाई। आदित्य की तरफ देखते हुए सुनैना खुद पर ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सेल्फिश होने का गिल्ट लेती हुई बोली, हाँ, मेरी भी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई। लास्ट टाइम जब आपका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ही नंबर लिया था मैंने नैना दी से, और तब से थोड़े दिन बाद हुई, उसके बाद फिर से उनका नंबर ही बंद आ रहा है, और फिर मुझे थोड़ी टेंशन हुई तो मुझे समझ नहीं आया किससे बात करूं इस बारे में, और फिर मैं आपके पास चला आया। मैंने ठीक किया ना दी? अरुण सुनैना के सामने पूरी बात साफ करते हुए बोला। तो सुनैना आगे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ, बिल्कुल ठीक किया, बैठो तुम। और फिर स्वीटी की तरफ देखते हुए कहती है, स्वीटी, तुम प्लीज गीता दीदी से बोल दोगी कि अरुण आया है, उसके लिए पानी और नाश्ता? हाँ भाभी, मैं बोल देती हूँ। इतना बोलकर स्वीटी वहाँ से किचन की तरफ जाने लगी तो अरुण मना करते हुए बोला, रहने दो दीदी, मैं वैसे भी घर से नाश्ता करके निकला था। लेकिन फिर भी स्वीटी वहाँ से चली गई। सुनैना और आदित्य अरुण के सामने बैठकर उससे बात करने लगे। तभी आदित्य बोला, कौन सी सिटी में शूटिंग थी तुम्हारी बहन की, बताओ, मैं पता करवाता हूँ और तुम दोनों की उससे बात भी हो जाएगी। आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना और अरुण दोनों ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि उन दोनों को ही नहीं पता था कि आदित्य कितना रिच और पावरफुल बिजनेसमैन है। उसने कभी ये बात जाहिर ही नहीं होने दी थी। कैसे, तुम कैसे पता लगा सकते हो इस बारे में? तुम्हारी क्या पहुंच है इन सब फिल्म और एक्टर एक्ट्रेस की शूटिंग लोकेशन के बारे में? सुनैना आदित्य की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए उससे सवाल करती है। सुनैना की बात पर अरुण अब पहले से भी ज्यादा हैरानी से उन दोनों को बारी बारी देखता है। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। आदित्य उन दोनों की हैरानी को नोट करते हुए एकदम मामूली से लहजे में बोला, जैसे कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात न हो। तो आदित्य उसे पहले की तरह सामान्य ही नजर आता है। जब सुनैना की नज़र अरुण पर पड़ती है तो वो समझ जाती है कि अरुण आखिर इस बात पर हैरान है कि सुनैना को आदित्य के बारे में ये नहीं पता कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो अपनी तरफ से बात संभालने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे वो मेरा मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री से क्या कॉन्टैक्ट होगा तुम्हारा, और वो सिटी, हाँ, सिटी तो मैंने बी से नहीं पूछी थी कि किस सिटी में है उनका शूट। अच्छा, तो फिर बात क्या हुई थी आखिरी बार तुम्हारी? अब किसी इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर की तरह सुनैना से सवाल पूछ रहा था आदित्य। सुनैना भी उसी तरह से नर्वस होते हुए जवाब सोच रही थी। अरे बात कहाँ, वो तो बस उधर से ही फ़ोन आया था अननोन नंबर से। उस नंबर से भी पहली और आखिरी बार ही बात हुई मेरी, ना उसके बाद और ना उसके पहले, सुनैना ने आदित्य को बताया। अरुण वहाँ पर उन दोनों के सामने बैठा काफ़ी दिलचस्पी से उन दोनों को देख रहा था। उन दोनों को पता भी नहीं चला कि स्वीटी वहाँ से निकलकर अपने कमरे की तरफ गई और गीता दीदी भी उन तीनों के लिए कॉफ़ी और कुकीज़ सामने मेज़ पर रखकर चली गई थीं। अच्छा, तो फिर वो नंबर ही इकलौती लीड है, ये याद है तुम्हें कॉल किस दिन आया था और टाइम भी? आदित्य के इस बात पर सुनैना ने फिर से मासूमियत से अपना सिर ना में हिलाया।
तो आदित्य थोड़ी मायूसी से अपना हाथ अपने माथे पर मारता है। ऐसे बात होकर अगर लास्ट में पता चल जाए कि कहाँ है नैना दी, तो फिर मुझे भी बता देना, क्योंकि मैं भी यहीं पर हूँ। आखिरकार थोड़ा सा इरिटेट होते हुए अरुण ने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हुए उन दोनों से कहा, क्योंकि उन दोनों की इस बेमतलब की बातों का कोई निचोड़ नहीं निकलने वाला था और इतना तो अरुण को भी समझ आ चुका था। क्या अरुण, तू भी अपनी मम्मी से सीख रहा है क्या ये सब? ज्यादा टाइम घर पर मत रहा कर। अरुण की बात सुनकर सुनैना उसे आंख दिखाते हुए बोली, तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। ठीक है, फिर मैं पता करता हूँ और तुम्हें कॉल करूँगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, नैना ठीक होगी, और अपने एग्जाम की थोड़ी प्रिपरेशन कर लेना। अपनी जगह से उठकर खड़ा होता हुआ अपनी पैंट की दोनों पॉकेट में अपने हाथ डालकर एकदम संजीदा लहजे में आदित्य अरुण और सुनैना की तरफ देखते हुए बोला, अरे ऐसे एकदम अचानक से कहाँ कहाँ जाओगे अब तुम? मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ ना। बोलते हुए सुनैना भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी मग सामने टेबल पर रखते हुए उठकर खड़ी हो जाती है। अरुण, कुछ समझाओ अपनी बहन को, और मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूँ, नैना जहाँ भी होगी मैं 3 दिन में उसका पता लगा लूँगा। बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरुण और सुनैना दोनों की तरफ बारी बारी से देखता हुआ आदित्य बोला। उसका लहजा इस बार भी पहले की तरह ही संजीदा था और उसकी बात से साफ हो गया था कि वो सुनैना को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। तो सुनैना उसकी तरफ नाराजगी से देखते हुए वापस बैठ गई और अब वो थोड़ी सी मायूस भी थी। आदित्य अपना मोबाइल फोन निकालकर किसी का नंबर डायल करते हुए घर के दरवाजे की तरफ जाता है और फिर तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। सुनैना कॉफी पीते हुए कनखियों से जाते हुए आदित्य की तरफ ही देखती रहती है, जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाता। अरे दी, बस भी करो, चले गए जीजू, और आपके एग्जाम चल रहे हैं और आप यहाँ ऐसे बातों में लगी हुई हो। घर पर तो आप किताबों से निकलती ही नहीं थी, इतना लाइटली लेने लगी हो क्या आप अपनी स्टडीज को? ऐसा भी क्या बदल गया लाइफ में? अरुण, तू ये सब कहाँ से सीख रहा है? पहले मेरी पढ़ाई छोड़ और तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। 12वीं क्लास जैसा नहीं होता है कॉलेज, ग्रेजुएशन काफी डिफिकल्ट होती है और तूने तो BSc करनी है, सुनैना फिर से अरुण को डांटने वाले अंदाज में कहती है।
अरे दी, मुझसे कहाँ होती है ये पढ़ाई वढ़ाई? तो माँ के डर से जबरदस्ती एडमिशन करवाना पड़ता है। आप तो जानती हो मुझे काफी अच्छे से, और ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं, मुझे तो कुछ बड़ा करना है, लेकिन नैना दीदी के बारे में पता चल जाए तो थोड़ी टेंशन कम हो। सुनैना की बात सुनकर अरुण बोलता है, हाँ बड़ा बनना है, बड़ा बन गया, जैसे कि नैना दी के मिलते ही बड़ा अंबानी बन जाएगा ना। तू और तेरे हवाई किले बस वही बनाता रहे, चुपचाप पढ़ाई कर ले, अभी भी वक्त है, और पहले कॉफी पी ले, ठंडी हो रही है। अरुण की बातें सुनकर सुनैना उसे हमेशा की तरह ही अपने अंदाज में समझाती हुई कहती है, जिसका अरुण पर असर नहीं होता, लेकिन वो उसकी आखिरी बात मानकर कम से कम कॉफी तो पीने लगता है। आदित्य के वहाँ से चले जाने पर सुनैना भी मन ही मन यही सोच रही थी कि आदित्य कैसे पता लगाएगा, आखिर कितने बड़े सोर्सेज हैं उसके और किन लोगों से कांटेक्ट है, क्योंकि उसकी होटल इंडस्ट्रीज थी और इसका फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन सुनैना जोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें थी जिनके बारे में सुनैना अभी नहीं समझती थी और वही सब वो मिस कर रही थी। मिल जाएगी ना नैना दी, वैसे उन्हें एक बार भी हमारा ध्यान नहीं आता होगा क्या? अरुण अपनी कॉफ़ी खत्म करके कप वापस टेबल पर रखता हुआ थोड़ी उदासी से सुनैना से पूछता है। डोंट वरी अरुण, आदित्य ने कहा है ना, तो वो पता लगा लेगा। सुनैना को खुद भी नहीं पता कि क्यों उसे आदित्य की कही बातों पर पूरे दिल से यकीन करने का मन हो रहा था, और वो अरुण को भी उसका नाम लेकर ही तसल्ली दे रही थी। तो अरुण ने भी सुनैना की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला गया क्रमशः।